युग हॉस्पिटल में था। मान्या के हमले के बाद वो खतरे से बाहर था, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। आज सुबह ही युग ने तारा और ध्रुव को यही कहा था कि शाम को उन्हें पग फेरे की रस्म के लिए मिस्टर मल्होत्रा के घर जाना है और उनसे मैप्स लेने हैं। युग ने तीनों पड़ावों की असेट्स को हासिल करने में अपना पहला कदम बढ़ा दिया था और उसके लिए उनके पास नक्शों का होना जरूरी था। तारा मौलिक के घर बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन युग के आगे वो मजबूर हो गई थी। जब युग पर हमला हुआ तो तारा को यही लगा कि कुछ दिन के लिए वो इसे आराम से टाल सकती है, लेकिन शाम के वक्त ध्रुव उसे मौलिक के घर ले जाने की जिद करने लगा। तारा को काफी हैरानी भी हुई और गुस्सा भी आ रहा था कि ध्रुव युग को अकेले छोड़कर आखिर उन पड़ावों और मैप्स के बारे में कैसे सोच सकता है। वो जाने से इनकार भी कर रही थी, लेकिन तभी ध्रुव ने उसे अपने पास खींचा और उसकी कमर पर गन रखती थी। मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे नहीं मारोगे, तारा ने ध्रुव की आंखों में देखकर चैलेंजिंग वॉइस में कहा। उसे ध्रुव पर गुस्सा भी आ रहा था। अच्छा, तो तुम्हें मेरे डैड की वजह से अपनी इम्पोर्टेंस समझ आ ही गई, ध्रुव ने गर्दन टेघी करके जवाब दिया। वजह चाहे जो भी हो, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। मैं तुम्हारी धमकियों और इस तरह डराने को अब बिल्कुल सीरियसली नहीं लेने वाली हूँ। छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तारा ने दांत पीसते हुए कहा और ध्रुव को खुद से दूर धकेलने लगी। ध्रुव ने तारा को और भी कसकर पकड़ लिया था। उसने तारा की आंखों में देखा और सर्द आवाज में कहा, अच्छा तो तुम मुझे सीरियस नहीं लेने वाली हो। देखो, ऐसा है कि किसी गलतफहमी में मत रहना, ये सच है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें घायल करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वैसे भी इस वक्त हम हॉस्पिटल में हैं और ये डैड के मामू का हॉस्पिटल है, कोई ये भी नहीं पूछेगा कि तुम्हें गोली किसने और क्यों मारी। देखा जाए तो अच्छा है, उसके बाद तुम्हें एक अच्छा बहाना मिल जाएगा अपने डैड के घर ना जाने का। बोलते हुए ध्रुव ने गन का सेफ्टी लॉक हटा दिया था। उसका हाथ ट्रिगर पर लगा हुआ था और उसकी बातें सुनकर तारा के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसने जल्दी से हामी में सिर हिलाया। ठीक है, चल रही हूँ, अब तो छोड़ो मुझे, तारा ने चिढ़कर कहा। ध्रुव ने तुरंत गन उसकी कमर से हटा ली थी और उसने मुस्कुराते हुए गन के आगे के सिरे को तारा की नाक पर लगाकर मुस्कुराकर कहा, गुड गर्ल। तारा ने अपनी नज़रें ध्रुव से फेर ली थी। ध्रुव तारा से दूर हुआ और एंट्रेंस की तरफ देखने लगा। उसने मलिक को बुलाया था। अगर ध्रुव को युग की सिक्योरिटी को लेकर किसी पर पूरी तरह विश्वास था तो वो सिर्फ मलिक ही था। मलिक और ध्रुव ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। ध्रुव बाहर की तरफ जाने लगा और तारा उसके पीछे पीछे पैर पटकते हुए आ रही थी। युग की पूरी सिक्योरिटी अब मलिक के ऊपर थी और ध्रुव बेफिक्र होकर अब वहां से निकल सकता था। तारा ने ध्रुव की तरफ देखा जिसकी पीठ उसे दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन कहा, चाहे जो भी हो जाए, आज मैं इसके साथ नहीं जाने वाली हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की? आई विश मिस्टर राणा होश में होते, तब मैं इसे बताती कि ये मुझे इतना हल्के में नहीं ले सकता है। तारा चलते हुए एक डॉक्टर के सामने आई। वो जल्दी से बोली, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, वो आदमी मेरा पति है और मेरे साथ जबरदस्ती करता है, मुझे बचा लीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपको बदले में पैसे दूंगी। तारा को हड़बड़ाते हुए जो समझ आ रहा था वो बोले जा रही थी। वहीं उसकी बातों ने आसपास के लोगों और बाकी स्टाफ का भी ध्यान खींच लिया था। ऐसा नहीं था कि ध्रुव के कानों में तारा की आवाज़ नहीं गई थी। उसने जब तारा को किसी से मदद मांगते सुना तो वो वहीं पर रुक गया था। उसने आईज रोल की और पलटकर उस डॉक्टर की तरफ देखा। अपने सामने ध्रुव को देखकर वो डॉक्टर थोड़ा सकपका गया था। उसने मुस्कुराते हुए तेज आवाज में कहा, वेलकम मिस्टर राणा, आपकी वाइफ बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इस तरह सोशल सर्वे करना जरूरी है कि लोग किस तरह अनजान लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव के बाद उसने तारा की तरफ देखकर कहा, वेल डन मिसेस राणा, इसी तरह अच्छा काम करती रहिए। डॉक्टर ने जानबूझकर तेज आवाज में कहा था ताकि आसपास के लोग तारा की बात को सीरियसली ना ले। उन्होंने एक नज़र तारा को घूर कर देखा और अपने अपने काम में लग गए थे। डॉक्टर की बातों से तारा को समझ आ गया था कि वहां काम करने वाला स्टाफ और हॉस्पिटल सब कुछ उन्हीं के अंडर था, तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। ध्रुव ने डॉक्टर को जाने का इशारा किया। उसके जाते ही ध्रुव तारा के पास आया तो वो हड़बड़ाते हुए बोली, वो मैं तारा सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्रुव ने उसकी बाजू को पकड़ा और उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी के पास लेकर गया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर तारा को अंदर की तरफ धकेल दिया था और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ध्रुव ने तारा की तरफ देखा और सरदमाज में कहा, मैं शांत हूँ तो सिर्फ डैड की वजह से, पर उम्मीद है कि आगे से किसी स्ट्रेंजर से हेल्प मांगकर हमारी सच्चाई बताने की कोशिश मत करना, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि वो तीन पड़ाव तुम्हारे जरिए अनलॉक हो सकते हैं। वे मुझे ना भी मिलेंगे तो चलेगा, मैं उम्र भर डैड के अंडर काम करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हारी जान मैं इसी वक्त सबके सामने लूंगा और इतना बेरहमी से मारूंगा कि। ध्रुव तारा को धमका रहा था, तभी तारा उसकी बात बीच में काटते हुए मुंह बनाकर बोली, बस करो, तुम जो चाहते हो वो हो गया और मुझे तुमसे डर लग रहा है। तारा ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली थी। वहीं ध्रुव ने भी अब कुछ नहीं कहा।
उसने गाड़ी स्टार्ट की और वे सीधा मल्होत्रा हाउस की तरफ जा रहे थे। मौलिक वापस अपने पुराने घर में शिफ्ट हो गया था, जो एक छोटा लेकिन खूबसूरती से बनाया हुआ पुराना घर था। मौलिक ने जानबूझकर तारा को इस घर में बुलाया था ताकि वो अपनी कड़वाहट को भूल सके। एक वक्त ऐसा था जब तारा और दिया के साथ मौलिक वहां रहा करता था। अगले 1.5 घंटे तक ध्रुव और तारा बिल्कुल शांत थे। जाहिर सी बात है कि वो दोनों एक दूसरे से नाराज और गुस्सा थे। जब ध्रुव ने मौलिक के घर के आगे गाड़ी रोकी तो तारा ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बांध ली थी। मौलिक के जाने के बाद भी वो छुपकर उस घर के आसपास आया करती थी और उसे उम्मीद भरी निगाहों से देखती थी। उस घर को देखते ही उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती थीं, जो कुछ अच्छी थी तो कुछ बहुत ज्यादा कड़वी। ध्रुव गाड़ी से बाहर निकला और तारा के लिए दरवाजा खोला। वो बाहर निकलने के बजाय अभी भी अंदर बैठी हुई थी तो ध्रुव ने तेज आवाज में कहा, बाहर निकलो, मार दो। तारा ने बिना किसी भाव के कहा। उसका चेहरा सामने की तरफ था, उसने ध्रुव की तरफ देखा तक नहीं था। वहीं ध्रुव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। कुछ पल बाद तारा ने ध्रुव की तरफ देखा और उसकी आंखों में देखकर सख्त आवाज में कहा, चाहे तो मार दो, क्योंकि तुम्हें अपने डैड के अंडर काम करने से कोई दिक्कत नहीं है और वो 3 पड़ाव नहीं भी मिलेंगे तो दुनिया नहीं बदलने वाली है। मैं इस घर के अंदर नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें मुझे वहां ले जाना है तो मेरी लाश को लेकर जाना होगा। ध्रुव ने आंखें घुमाई और झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, पता है ना, गलत इंसान के सामने गलत बातें बोल रही हो। डैड का सपना है तभी पूरा कर रहा हूँ, वरना मुझे तुम्हारी लाश को भी अंदर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिलहाल तुम्हें जिंदा ही चलना होगा। तारा कुछ समझ पाती उससे पहले ध्रुव ने उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के बाहर खींच लिया था। उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और अगले ही पल तारा को अपने कंधे पर उठा लिया था। तारा ने पीछे से ध्रुव को न जाने कितना मारा होगा, लेकिन फिर भी वो बिना किसी भाव के उसे कंधे पर उठाकर अंदर लेकर जा रहा था।
छोड़ो मुझे ध्रुव राणा, मैंने कहा नीचे उतारो वरना अच्छा नहीं होगा, तारा उस पर गुस्से में चिल्ला रही थी। ध्रुव ने आगे जाकर दरवाजा खटखटाया, जिसे मौलिक ने एक ही मिनट में खोल दिया था, क्योंकि वो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। अंदर आने के बाद ध्रुव ने तारा को नीचे उतारा तो वहीं मौलिक ने घर को फिर से लॉक कर दिया था। मौलिक को ये पूछने की भी जरूरत नहीं थी कि आखिर ध्रुव तारा को इस तरह कंधे पर उठाकर क्यों लेकर आया था। उसे पता था कि तारा उस जगह पर कभी अपनी मर्जी से नहीं आना चाहेगी, खासकर तब जब वहां मौलिक ने उसे आने के लिए मजबूर किया था। जैसे ही ध्रुव ने तारा को नीचे उतारा, उसने मौलिक और ध्रुव की तरफ घूर कर देखा और फिर दरवाजे की तरफ दौड़कर उसे खोलने के लिए जाने लगी। मौलिक की आंखों में लाचारी के भाव थे और उसने ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव ने बिना कुछ कहे कंधे उचका दिए थे। वो मन ही मन बड़बड़ाकर बोला, अब मुझे खुद पर डाउट हो रहा है कि क्या मैंने इस लड़की से प्यार किया था, क्या वो सब इसका दिखावा था जो ये इतना डिसेंट बनकर रहती थी। ध्रुव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और तारा के पीछे जाकर उसे दोनों हाथों से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। वो शांत लहजे में बोला, इतना भी मुश्किल नहीं है, एक डिनर ही तो करना है। तुम्हारे लिए नहीं होगा लेकिन मेरे लिए है। जिस इंसान की तुम रिस्पेक्ट करते हो, मुझे यकीन नहीं होता तुम इसके बारे में अच्छे से जानते नहीं हो। मैं बच्ची थी, ठीक है, ये मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन इस तरह कौन प्रोटेक्ट करता है कि एक मासूम बच्ची पर अपनी पत्नी के साथ हुए हादसे का सारा इल्ज़ाम लगाकर उससे सारे रिश्ते तोड़ ले। ठीक है, मान लिया कि तब उनकी मजबूरी थी और मैं उसे समझने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे दोबारा धोखा दिया। उन्होंने मुझे कहा था कि ये मेरी मदद करेंगे ताकि हम दोनों की शादी ना हो, लेकिन इन्होंने क्या किया, मुझे भगाकर तुम्हारे घर के आगे लाकर छोड़ दिया था। इन्होंने मुझे 2 बार धोखा दिया है और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इन पर भरोसा करूंगी, तारा गुस्से में चिल्लाकर बोली। उसके अंदर की सारी भड़ास उसने ध्रुव पर निकाल दी थी। मौलिक तारा के पास आया और शांत लहजे में कहा, ध्रुव अच्छा इंसान है। तारा ने तुरंत मौलिक की तरफ देखा और कड़वाहट से हंसते हुए कहा, हाँ बहुत अच्छा इंसान है, दिन में 2-3 बार तो मुझे मारने की धमकी दे ही देता है। मौलिक ने घूरते हुए ध्रुव की तरफ देखा तो उसने तुरंत नजरें दूसरी तरफ फेर ली थीं। मौलिक ने तारा को समझाते हुए आगे कहा, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी जो पोजीशन है उसके बाद तुम राणा फैमिली में ही सुरक्षित रह सकती हो। मेरी कोई पोजीशन नहीं है और ज़बरदस्ती की चीज़ रखने का शौक नहीं है मुझे, और कोई 2 साल की बच्ची नहीं हूँ मैं जिसे राणा फैमिली प्रोटेक्ट करेगी, मेरे बारे में कोई नहीं जानता है, तारा ने चिढ़कर जवाब दिया। मौलिक ने गहरी सांस ली और अपना मोबाइल निकालकर तारा की तरफ कर दिया था। उन्होंने अफसोस भरे लहजे में कहा, नहीं, अब सब तुम्हारे बारे में जानते हैं। अगर तुम्हारी शादी ध्रुव से नहीं होती तो कोई और माफिया तुम्हें पकड़कर ले जाता और तुमसे शादी करके वो सब हासिल करने की कोशिश करता, मैं भी मजबूर हो जाता। ऐसे में ध्रुव मुझे बेहतर ऑप्शन लगा। मौलिक तारा को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने आखिरी वक्त पर अपना फैसला बदलकर तारा को धोखा क्यों दिया था। शादी की कुछ देर पहले ही जब मौलिक तारा को भगाने की तैयारी कर चुका था, तब योग उसके पास आया था और उसने सच्चाई के बारे में बताया था। हालांकि मौलिक कोई भी फैसला लेता, लेकिन योग तारा के भागने के सच को जानता था, तो जाहिर सी बात थी कि उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर मौलिक तारा को ध्रुव से दूर नहीं भेज सकता था। लेकिन मौलिक ने भी फिर ध्रुव और तारा की शादी के लिए अपनी खुशी से सहमति जता दी थी। तारा ने मौलिक की बात को अनदेखा किया और गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मुझे कोई बहस नहीं करनी और ना ही आपकी बात सुननी है। आप चाहते थे ना हम दोनों यहाँ पर आए, तो हम आ गए हैं, अब हमें वो मैच दे दीजिए।
मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है, बिना खाए कुछ नहीं मिलने वाला। डाइनिंग एरिया कहाँ है तुम्हें पता है, तो आ जाओ मैं सर्व करता हूँ, मौलिक बोला और किचन की तरफ बढ़ गया था। जाते हुए उन्होंने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, आज भी उतनी ही जिद्दी है और उसी तरह नखरे दिखाती है। तब भी तुम्हें तुम्हारी माँ के बजाय मैं ही संभालता था, तो अब भी मैं ही संभालूंगा। ध्रुव ने तारा को आगे चलने का इशारा किया। तारा पैर पटकते हुए चल रही थी, वहीं ध्रुव उसके पीछे आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रतिभा एक लंबा सफर तय करने के बाद इस वक्त राजस्थान में थी। ऐसा नहीं था कि प्रतिभा अकेली थी जो राणा मेंशन में राणा फैमिली के खिलाफ काम करती थी, कोई और भी था जिसकी मदद से प्रतिभा सुरक्षित पहुंच गई थी, पर साथ ही वो दुखी थी कि वो मान्या को नहीं बचा पाई। प्रतिभा गानी से बाहर निकली और इस वक्त एक आदमी के सामने खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सर झुकाकर कहा, मुझे उनकी कमजोरी, हर एक राज और हर चीज के बारे में काफी कुछ पता है, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मासी की मौत का बदला लें और साथ ही माफिया की दुनिया को अब राणा फैमिली से आजादी मिले। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही, और राणा फैमिली का एक नया दुश्मन खड़ा हो गया है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।